इम्पीरियल कॉलेज, मुंबई। दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। कॉलेज की कक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं और अधिकांश छात्र घर लौट रहे थे। इन छात्रों के बीच वो लड़की की दिखाई दी जिसने एलईडी स्क्रीन के सामने बैठकर निक को देखा था, और उसे देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने व्हाइट कलर की हुडी वाली ड्रेस पहन रखी थी जो उसके साइज से 2 गुनी बड़ी थी और खुली खुली लग रही थी, मगर खुली होने के बावजूद ड्रेस उसे शानदार लुक दे रही थी। उसके बाल आधे जूड़े के रूप में बंधे हुए थे और आधे खुले थे। खुले बाल दोनों ओर बराबर थे। आंखों पर बड़ा व्हाइट कलर का चश्मा था जो बस शूट देखने के लिए था। पीठ पर लेदर का बैग टंगा हुआ था जिसके पट्टों को सामने से दोनों हाथों से पकड़ रखा था। वो लड़कों की भीड़ से अलग हुई और कंपाउंड की ओर चल दी। वहां जाकर वो एक बेंच पर बैठी और अपना लैपटॉप निकालकर उस पर कुछ सर्च करने लगी। उसने जो भी सर्च किया वो उसे मिल गया। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ मोड़कर अपनी ठुड्डी उस पर टिका दी। क्या हुआ प्रियल दी, कहाँ खोई हुई है? उसका ध्यान उसी उम्र की एक लड़की ने तोड़ा जिसने शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। वो भी दिखने में सुंदर थी मगर उससे थोड़ी पतली थी। मैं बताता हूँ अपनी प्रियल कहाँ खोई हुई है। तभी एक लड़का वहाँ आया जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। उसने डेनिम की जैकेट, ग्रीन टी शर्ट, जीन्स की पैंट और लेदर के बूट पहन रखे थे। ये एक ऐसी दुनिया में गोते खा रही है जिसे कल्पना का एक कभी ना खत्म होने वाला अत्यंत विशाल संसार कहा जाता है, यानी कि अपने ख्यालों में। प्रियल ने अपना लैपटॉप बंद किया और कुछ कहने के लिए अपना चेहरा ऊपर किया। तभी आई लड़की लड़के की तरफ देखते हुए बोली, ओए अर्जुन, तू चौहान सर की क्लास लेकर आया है जो इतनी जोर हिंदी बोल रहा है? फिर उसने प्रियल की तरफ चेहरा किया और पूछा, बताना दी कहाँ खोई हुई है? अरे प्रांजल, कहाँ ना मैं बताता हूँ, अर्जुन बोला और कूद कर प्रियल के बगल में ही बैठ गया। वहाँ उसने उसे लैपटॉप छीन लिया। प्रियल ने उसे वापस लेने की कोशिश की मगर अर्जुन ने उसे दूर कर लिया। रुको ना प्रियल, एक मिनट मुझे बताने तो दो, ये कहकर उसने लैपटॉप खोल दिया। लैपटॉप को खोलते ही सामने गूगल दिखा जिसके ऊपर निक को सर्च किया गया था, और उसे सर्च करने पर सिर्फ होटल पाइन क्रीक की तस्वीर आ रही थी। लो भाई साहब, मेरा शक बिल्कुल सही निकला, मैडम उसी भाई साहब के ख्यालों में खोई हुई है जिसे इसने कल रात टीवी के अंदर देखा था। क्या, कब? प्रांजल अर्जुन की तरफ हुई और लैपटॉप में झांका। मैं उस वक्त कहाँ थी और इसने इसे कैसे टीवी में देखा? उसने पूछा। तुम उस वक्त तुम घोड़े से भी गंदे खराटे लेकर गहरी नींद में सो रही थी, अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में कहा, और इसने इसे ऐसे टीवी में देखा। अर्जुन ने इंटरनेट से उसी चैनल के कल रात के क्लिप लगा दिए। वहां निक का वही डायलॉग दोबारा से आया। यूएसए की एक वेल प्रिपेयर्ड एजेंसी के एजेंट होने के नाते हम आगे भी पीपल सेफ्टी के लिए अपना काम इसी तरीके से करते रहेंगे। क्या बात है मिस प्रियल, लगता है इसने पहली ही नजर में तुम्हारा दिल जीत लिया, अर्जुन अलग ही अंदाज में रिएक्ट करते हुए बोला। प्रियल ने नाक को उंगली से सिकोड़ा और कहा, हाँ तो क्या, कोई गलत बात है क्या? देखो तो कितना सोना मुंडा है, मेरा दिल इसे देखते ही धड़कने लगा था। जब से इसे देखा है बस इसी के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं क्यों ये लग रहा है जैसे इसके और मेरे बीच में कोई गहरा रिश्ता है। अर्जुन हंसा और बोला, साइंस इसे रिश्ता नहीं बीमारी कहता है। साइंस के हिसाब से अगर हम किसी के बारे में बार बार सोचें तो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, समझी मैडम? ये हार्मोन प्रॉब्लम होती है, ना कि कोई गहरा रिश्ता। अब आ गया ना समझ में ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रांजल अर्जुन के पास बैठी और कहा, वो आपको जानता भी नहीं और आप हैं कि उसके चक्कर में, कोई इतना भी कैसे किसी के पीछे पागल हो सकता है कि पहली नज़र में ही सब कुछ भूल जाए? नहीं नहीं, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं कि बस देखने भर से डब्बा गोल हो जाए, प्रियल बोली। इसके पीछे पागल होने का एक कारण ये भी है कि मुझे भी एक एजेंट बनना है। तभी प्रांजल बोली, तो करूँ अपनी डैड से बात, वो किसी एजेंसी के अथॉरिटी मेंबर हैं। अर्जुन तुरंत प्रियल की टांग खींचता हुआ बोला, हाँ मैडम, इंटेलिजेंस बहुत है ना जो वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेगी, इसे तो वो लोग दरवाजे के सामने भी ना खड़े होने दे। हाँ दी, वहाँ कैसे लेंगे आप ट्रेनिंग? पता है ना वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए हर तरह से फिट होना पड़ता है, और स्ट्रांग भी, प्रांजल ने कहा। पता नहीं, जब भी मैं टीवी में किसी सीक्रेट एजेंट को देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी जाऊँ। कितने कूल होते हैं ये, इनका काम, इनका लुक, स्टाइल, एटीट्यूड सब, प्रियल आधी बात लगभग ख्यालों में खोई हुई बोली। पर प्रियल दी, इन्हें पढ़ना भी बहुत पड़ता है, जिसमें आपका तो बिल्कुल भी मन नहीं है, आप दोनों की मुलाकात कभी नहीं होने वाली। प्रियल ने अपने चेहरे पर नाखुशी से दिखाई और लैपटॉप छीनकर उसे पकड़ लिया। लैपटॉप पकड़ते हुए उसने कहा, पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा, अगर भगवान ने चाहा तो हम दोनों की मुलाकात जरूर होगी। यूएसए एनए एजेंसी जो किसी इंस्टीट्यूट की तरह थी का ऑफिस रूम। निक लेदर की कुर्सी पर बैठकर एक मैगजीन पढ़ रहा था। उसका ऑफिस सलीके से सजा हुआ था। एसी की हल्की कूलिंग में उसका ध्यान पूरी तरह से मैगजीन में था। उसने मैगजीन पूरी पढ़ी जिसके बाद उसके चेहरे पर गुस्सा आया और उसने मैगजीन अपने हाथ में मरोड़ते हुए दूर फेंक दी। तभी एमा वहां आई जिसने आते ही अपने सामने गिरी मैगजीन को देखा। एमा ने मैगजीन उठाई और पूछा, क्या हुआ, इतना गुस्सा किस बात पर किया जा रहा है निक? तुम भी इतना ही गुस्सा करोगी, निक बोला, अगर ये न्यूज़ पढ़ोगी। नहीं, बकवास न्यूज़, अगर ये बकवास न्यूज़ पढ़ोगी तो। क्या कुछ भी लिखते रहते हैं ये न्यूज़ वाले, जबकि वो लोग कुछ जानते भी नहीं है। आई विल सू देम, मैं उन पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। एमा ने मैगजीन उठाई और उसके कुछ शब्दों पर गौर किया। उसमें उन दोनों का इंटरव्यू था। इंटरव्यू के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें एमा और निक एक साथ थे और एमा के हाथ निक के नाम का टैटू बना हुआ था जिसे गोल घेरे से हाईलाइट किया गया था। गोल घेरे के पास कैप्शन था जिसके ऊपर लिखा गया था, होटल पाइन क्रीक के मालिक का अफेयर अपनी जूनियर एमा के साथ। निक एमा की तरफ देख भड़कते हुए बोला, ये सब तुम्हारे टैटू की वजह से हुआ है, क्या जरूरत थी टैटू बनवाने की, और अगर बनवाना ही था तो ऐसे सामने हाथ पर ही क्यों बनवाया। एमा आगे आई और मैगजीन टेबल पर रखते हुए बोली, अब क्या लोगों के डर से मैं अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस ना करूं, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये टैटू तुम्हारे नाम का नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए बनवाया है, अब मेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी निक है तो मैं इसमें क्या करूं। निक ने उसे तिरछी आंखों से देखा, और यही बात तुम रिपोर्टर्स को नहीं बता सकती थी, उन्होंने कौन सा मुझसे पूछा था, अगर पूछा होता तो बता देती, एमा ने टेबल के सामने पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा। बैठने के बाद वो आगे बोली, और तुम्हें लोगों के ओपिनियन का कब से फर्क पड़ने लगा, तुम तो लोगों के ओपिनियन को अहमियत ही नहीं देते थे। मुझे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, निक बोला, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी बकवास लिख दो, दोस्त होने के साथ साथ ये मेरी जूनियर भी है, यहाँ के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और मैगजीन उठाकर बोला, मैं अभी जाकर इनके एडिटर से बात करता हूँ, अगर मैंने इनसे माफी ना मंगवाई तो मेरा नाम भी निक नहीं। एमा आगे कुछ कहती उससे पहले ही निक गुस्से में वहां से चला गया। एमा उसके जाने के बाद बोली, ये बंदा कितनी किचकिच करने लगा यार, पता नहीं ऐसे किचकिच में कौन इसके पीछे पागल होगी।